Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE March 2021 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
विश्व पुस्तक मेले में आपका स्वागत है. इस वर्ष के पुस्तक मेले के दो मुख्य आकर्षण हैं, गांधी पंडाल और सूचना प्रौद्योगिकी पंडाल. मेले के बारे में सारी जानकारी मेला गाइड में मौजूद है, जिसे आप सूचना केंद्र से ले सकते हैं. लोकप्रिय पंडालों में प्रवेश के लिए आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, ताकि अंदर भीड़ ना हो. मेले के द्वार शाम 9 बजे बंद होंगे. धन्यवाद. विश्व पुस्तक मेले में आपका स्वागत है. इस वर्ष के पुस्तक मेले के दो मुख्य आकर्षण हैं, गांधी पंडाल और सूचना प्रौद्योगिकी पंडाल. मेले के बारे में सारी जानकारी मेला गाइड में मौजूद है, जिसे आप सूचना केंद्र से ले सकते हैं. लोकप्रिय पंडालों में प्रवेश के लिए आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, ताकि अंदर भीड़ ना हो. मेले के द्वार शाम 9 बजे बंद होंगे. धन्यवाद.
संवाद दो.
भैया, जरा बाल धुलवाने थे.
जी, अपना नाम बताएंगी आप?
ओह, मैंने बुकिंग तो नहीं कराई है.
माफ कीजिए, तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा.
भैया, मुझे केवल बाल धुलवाने हैं, बनवाने नहीं हैं.
जी जरूर, लेकिन बुकिंग वालों को मना तो नहीं कर सकते ना.
कितना समय लग सकता है, अंदाजन?
जी कह नहीं सकता.
भैया, जरा बाल धुलवाने थे.
जी, अपना नाम बताएंगी आप?
ओह, मैंने बुकिंग तो नहीं कराई है.
माफ कीजिए, तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा.
भैया, मुझे केवल बाल धुलवाने हैं, बनवाने नहीं हैं.
जी जरूर, लेकिन बुकिंग वालों को मना तो नहीं कर सकते ना.
कितना समय लग सकता है, अंदाजन?
जी कह नहीं सकता.
संवाद तीन.
भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा पंसारी की दुकान से या सुपरमार्केट से खरीदा हुआ शहद कुछ महीनों बाद जमने लगता है. शहद का रंग बदल जाता है, उसमें दाने बनने लगते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट होती है. एक शीशी का दाम होता है कम से कम 100 रुपए, लेकिन हम आपको दे रहे हैं बाग के छत्तों से निकाला हुआ एकदम असली और गुणकारी शहद. खराब हो जाए तो दाम वापस, और दाम केवल 50 रुपए. शुद्धता की पूरी गारंटी है, और हमारा पता शीशी पर है.
भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा पंसारी की दुकान से या सुपरमार्केट से खरीदा हुआ शहद कुछ महीनों बाद जमने लगता है. शहद का रंग बदल जाता है, उसमें दाने बनने लगते हैं, क्योंकि उसमें मिलावट होती है. एक शीशी का दाम होता है कम से कम 100 रुपए, लेकिन हम आपको दे रहे हैं बाग के छत्तों से निकाला हुआ एकदम असली और गुणकारी शहद. खराब हो जाए तो दाम वापस, और दाम केवल 50 रुपए. शुद्धता की पूरी गारंटी है,
और हमारा पता शीशी पर है।
संवाद 4।
नमस्ते, आप अकेली हैं या साथ में और लोग भी हैं?
जी, 3 लोग और हैं।
पहली मंजिल पर बैठना चाहेंगी या यहीं नीचे?
मौसम अच्छा है, पीछे लॉन में जगह नहीं है क्या?
माफ कीजिए, वहां तो एक पार्टी चल रही है। 2 घंटे लगेंगे।
ठीक है, तब पहली मंजिल पर बिठा दीजिए, खिड़की के पास।
मैं देखता हूं, बस 5 मिनट दीजिए।
धन्यवाद।
नमस्ते, आप अकेली हैं या साथ में और लोग भी हैं?
जी, 3 लोग और हैं।
पहली मंजिल पर बैठना चाहेंगी या यहीं नीचे?
मौसम अच्छा है, पीछे लॉन में जगह नहीं है क्या?
माफ कीजिए, वहां तो एक पार्टी चल रही है। 2 घंटे लगेंगे।
ठीक है, तब पहली मंजिल पर बिठा दीजिए, खिड़की के पास।
मैं देखता हूं, बस 5 मिनट दीजिए।
धन्यवाद।
संवाद 5।
क्लेयर पोलोसैक ने शनिवार को ओमान और नामीबिया के बीच वर्ल्ड क्रिकेट लीग के मैच में अंपायर की भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्होंने पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली महिला अधिकारी के तौर पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। क्लेयर पोलोसैक इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक राष्ट्रीय लीग पुरुष मैच में पहली महिला फील्ड अंपायर बनी थीं। इसके अलावा वे 2018 के T20 महिला विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में अंपायर की भूमिका निभा चुकी थीं। क्लेयर पोलोसैक ने शनिवार को ओमान और नामीबिया के बीच वर्ल्ड क्रिकेट लीग के मैच में अंपायर की भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्होंने पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली महिला अधिकारी के तौर पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। क्लेयर पोलोसैक इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक राष्ट्रीय लीग पुरुष मैच में पहली महिला फील्ड अंपायर बनी थीं। इसके अलावा वे 2018 के T20 महिला विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में अंपायर की भूमिका निभा चुकी थीं।
संवाद 6।
नमस्ते भाई साहब, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं गए थे क्या?
हाँ, कुछ दिनों के लिए जयपुर चले गए थे।
लेकिन भाभी तो कह रही थी आपने काम छोड़ दिया।
हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं छोड़ा, दोस्तों ने बुला लिया था।
अच्छा, लेकिन बेटा अनिल भी तो वहीं रहता है।
नहीं, वे तो रायपुर में है, सलील वहां रहता है।
अरे हाँ, खैर ये बताइए अनिल कब आ रहा है? नमस्ते भाई साहब, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं गए थे क्या?
हाँ, कुछ दिनों के लिए जयपुर चले गए थे।
लेकिन भाभी तो कह रही थी आपने काम छोड़ दिया।
हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं छोड़ा, दोस्तों ने बुला लिया था।
अच्छा, लेकिन बेटा अनिल भी तो वहीं रहता है।
नहीं, वे तो रायपुर में है, सलील वहां रहता है।
अरे हाँ, खैर ये बताइए अनिल कब आ रहा है?
ये अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात।
तमिल इतिहासकार प्रेमा लक्ष्मणन के साथ मनोरमा के संवाददाता राजन वीरभद्र की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों ए से एच को भरिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी। प्रेमा लक्ष्मणन जी, मनोरमा के पाठकों की ओर से आंचलिक यात्रा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद राजन जी।
तो कहिए प्रेमा जी, आज आप हमारे पाठकों को किस गांव की यात्रा पर लेकर चल रही हैं?
राजन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले सप्ताह मेरा जाना तमिलनाडु के एक ऐसे गांव में हुआ जहां जूते चप्पल नहीं पहने जाते, बच्चे बूढ़े सब नंगे पांव ही रहते हैं।
मगर क्यों? लोग पूजा स्थलों में तो आदर सम्मान के लिए जूते चप्पल उतार कर जाते हैं, लेकिन पूरे गांव में नंगे पांव रहने की क्या वजह हो सकती है?
नहीं, कुछ लोग कुएं बावड़ियों पर और कुछ अपने घरों में भी सफाई रखने के लिए जूते चप्पल उतार कर जाते हैं। जापान में तो स्वच्छता के लिए जूते चप्पल घरों से बाहर उतार देने की आम परंपरा है, लेकिन मेरी जानकारी में तमिलनाडु का ये गांव अकेला ऐसा गांव है जहां लोग पूरे गांव में नंगे पांव घूमते हैं। यहां रहने वाले अधिकतर लोग आसपास के धान के खेतों में मजदूरी करते हैं।
लेकिन इस गांव में नंगे पांव रहने की परंपरा क्यों पड़ी?
जी, अंडमान गांव के प्रवेश द्वार के पास एक तालाब है जिसके किनारे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। इसके नीचे एक पुराना ग्राम देवी का मंदिर है। गांव में नंगे पांव रहने की परंपरा इसी देवी के प्रति श्रद्धा के रूप में शुरू हुई।
पर क्यों? कोई घटना हुई थी क्या?
जी हाँ, गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मंदिर की स्थापना के समय कोई जूते पहनकर आ गया था और ऐसा बीमार पड़ा कि घबराकर सारे गांव वालों ने प्रायश्चित के तौर पर मंदिर ही नहीं वरन पूरे गांव में जूते चप्पल ना पहनने का व्रत लिया। उसके बाद वह व्यक्ति तो ठीक हो गया, लेकिन गांव वालों ने नंगे पांव रहने की परंपरा जारी रखी। उनका विश्वास है कि देवी गांव की रक्षा करती है।
लेकिन लोग जब बाहर से आते हैं तो अपने जूते कहाँ रखते हैं?
कहीं नहीं, बस गांव में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल उतारकर या तो हाथों में उठा लेते हैं या फिर थैले में रख लेते हैं। गांव से बाहर काम पर जाने वाले मजदूर, पढ़ने जाने वाले बच्चे और कारोबार या नौकरी पर जाने वाले लोग सभी गांव से बाहर आकर जूते पहन लेते हैं।
क्या सभी लोग स्वेच्छा से इस परंपरा का पालन करते हैं? कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करता?
नहीं, यही इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी स्वेच्छा से इस नियम का पालन करते हैं। नंगे पांव रहना एक आदत बन गई है, किसी को किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है।
और यदि कोई इस नियम को न माने तो?
तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यह कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है बल्कि प्यार और सम्मान में रची बसी एक स्वस्थ परंपरा है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को तो जूते पहनने की छूट है, लेकिन वे भी नहीं पहनते। इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि गांव में सफाई रहती है ताकि लोगों के पांव गंदे ना हों। पेड़ लगे हैं ताकि रास्ते धूप में तपकर गर्म ना हों।
प्रेमा जी, तमिलनाडु के इस अनूठे गांव के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। प्रेमा लक्ष्मणन जी, मनोरमा के पाठकों की ओर से आंचलिक यात्रा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद राजन जी।
तो कहिए प्रेमा जी, आज आप हमारे पाठकों को किस गांव की यात्रा पर लेकर चल रही हैं?
राजन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले सप्ताह मेरा जाना तमिलनाडु के एक ऐसे गांव में हुआ जहां जूते चप्पल नहीं पहने जाते। बच्चे बूढ़े सब नंगे पांव ही रहते हैं।
मगर क्यों? लोग पूजा स्थलों में तो आदर सम्मान के लिए जूते चप्पल उतार कर जाते हैं, लेकिन पूरे गांव में नंगे पांव रहने की क्या वजह हो सकती है?
नहीं, कुछ लोग कुएं बावड़ियों पर और कुछ अपने घरों में भी सफाई रखने के लिए जूते चप्पल उतार कर जाते हैं। जापान में तो स्वच्छता के लिए जूते चप्पल घरों से बाहर उतार देने की आम परंपरा है, लेकिन मेरी जानकारी में तमिलनाडु का ये गांव अकेला ऐसा गांव है जहां लोग पूरे गांव में नंगे पांव घूमते हैं। यहां रहने वाले अधिकतर लोग आसपास के धान के खेतों में मजदूरी करते हैं।
लेकिन इस गांव में नंगे पांव रहने की परंपरा क्यों पड़ी?
जी, अंडमान गांव के प्रवेश द्वार के पास एक तालाब है जिसके किनारे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। इसके नीचे एक पुराना ग्राम देवी का मंदिर है। गांव में नंगे पांव रहने की परंपरा इसी देवी के प्रति श्रद्धा के रूप में शुरू हुई।
पर क्यों? कोई घटना हुई थी क्या?
जी हाँ, गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मंदिर की स्थापना के समय कोई जूते पहनकर आ गया था और ऐसा बीमार पड़ा कि घबराकर सारे गांव वालों ने प्रायश्चित के तौर पर मंदिर ही नहीं वरन पूरे गांव में जूते चप्पल ना पहनने का व्रत लिया। उसके बाद वह व्यक्ति तो ठीक हो गया, लेकिन गांव वालों ने नंगे पांव रहने की परंपरा जारी रखी। उनका विश्वास है कि देवी गांव की रक्षा करती है।
लेकिन लोग जब बाहर से आते हैं तो अपने जूते कहां रखते हैं?
कहीं नहीं, बस गांव में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल उतारकर या तो हाथों में उठा लेते हैं या फिर थैले में रख लेते हैं। गांव से बाहर काम पर जाने वाले मजदूर, पढ़ने जाने वाले बच्चे और कारोबार या नौकरी पर जाने वाले लोग सभी गांव से बाहर आकर जूते पहन लेते हैं।
क्या सभी लोग स्वेच्छा से इस परंपरा का पालन करते हैं? कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करता?
नहीं, यही इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी स्वेच्छा से इस नियम का पालन करते हैं। नंगे पांव रहना एक आदत बन गई है, किसी को किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है।
और यदि कोई इस नियम को न माने
तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यह कोई कठोर धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि प्यार और सम्मान में रची बसी एक स्वस्थ परंपरा है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को तो जूते पहनने की छूट है, लेकिन वे भी नहीं पहनते। इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि गांव में सफाई रहती है ताकि लोगों के पांव गंदे ना हों। पेड़ लगे हैं ताकि रास्ते धूप में तपकर गर्म ना हों।
प्रेमा जी, तमिलनाडु के इस अनूठे गांव के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8 से 15।
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश सिंघल के साथ विज्ञान पत्रकार नेहा धूलिया की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में रेखांकित की गई गलती को सही शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करते हुए ठीक कीजिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
प्रोफेसर दिनेश सिंह, आरोग्य के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद नेहा जी।
दिनेश जी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिवेशन में ये कहा गया था कि हमारे स्वास्थ्य की देखरेख में किसी नई तकनीक की सहायता से आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जरा बताएंगे कि किस नई तकनीक की बात हो रही है और वह क्या परिवर्तन लाएगी?
नेहा जी, बीमारियों से निपटने के दो रास्ते हैं। पहला, बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही उसका इलाज किया जाए। दूसरा, बीमारी की संभावना का पता लगाकर उसकी रोकथाम कर ली जाए। अधिकतर बीमारियों का इलाज उनके लक्षण नजर आने पर किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां घातक होती हैं। जिनका इलाज लक्षण नजर आने से पहले किया जाए तो आसान रहता है, जैसे कैंसर और हृदय रोग। लेकिन लक्षण दिखाई देने से पहले इनकी दस्तक सुन लेना आम चिकित्सक के बस का काम नहीं है। यह काम कंप्यूटरों की कृत्रिम बुद्धि के सहारे किया जा सकता है।
लेकिन यह कृत्रिम बुद्धि रोगों की संभावना का पता कैसे लगाती है? कोई उदाहरण देकर समझाइए।
नेहा जी, असल में देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत में कई ऐसे वैद्य हुए हैं जो इंसान की नाड़ी की गति और चेहरे के परिवर्तन को पढ़कर बीमारी को पहचान लेते थे और उनकी दवाएं काम कर जाती थीं। लेकिन ये काम हजारों में कोई एक वैद्य कर पाता था। आजकल इसी काम को कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गूगल कंपनी के एक शोध दल ने कृत्रिम बुद्धि को ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि वह लोगों की नाड़ी की गति और आंखों के रेटिना तक खून पहुंचाने वाली बारीक नलियों के अंतर को पढ़कर यह बता सकती है कि इंसान को दिल की बीमारी होगी या नहीं।
यह तो हैरानी की बात है। क्या कृत्रिम बुद्धि के दिल की बीमारी के पूर्वानुमान सही निकले हैं?
जी हाँ, 90% सही। यही नहीं, एक सीरियाई वैज्ञानिक ने तो एक ऐसी मशीन तैयार की है जो चुंबकीय तरंगों की सहायता से घर में रहने वाले सभी सदस्यों की दिल की धड़कन और नींद जैसी शारीरिक गतिविधियों से लेकर शरीर में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखती है और इनके सहारे किसी भी तरह की भावी बीमारी के प्रति सावधान करती रहती है।
अरे वाह, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये मशीन बड़े काम की हो सकती है। यह किस किस तरह की बीमारियों को पकड़ सकती है?
ये शारीरिक के साथ साथ तनाव और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों के प्रति भी सचेत कर सकती है। चिकित्सा और कंप्यूटर तकनीक के वैज्ञानिक मिलकर कृत्रिम बुद्धि वाली कुछ ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो चिकित्सा के पारंपरिक रूप को बदल रही हैं। जैसे अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एली नाम की आभासी डॉक्टर बनाई है जो चेहरा पढ़कर मानसिक बीमारी का पता लगा लेती है। एक कंपनी ने फेस टू जीन नाम का एक ऐप बनाया है जो चेहरे को पढ़कर आनुवंशिक रोगों की संभावना के बारे में बता सकता है।
यानी काफी दिलचस्प काम हो रहे हैं। इनसे हमारे स्वास्थ्य की देखरेख पर क्या असर पड़ेगा?
मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोगों का इलाज करने की बजाय उनके कारणों को खत्म करना स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य बन जाएगा। नए आविष्कारों की राह कठिन जरूर होगी, लेकिन इसके सहारे लोगों का स्वास्थ्य और बेहतर होगा और पैसा भी कम खर्च होगा।
प्रोफेसर दिनेश सिंह, स्वास्थ्य की देखरेख में होने जा रहे परिवर्तनों पर रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। प्रोफेसर दिनेश सिंह, आरोग्य के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद नेहा जी।
दिनेश जी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिवेशन में यह कहा गया था कि हमारे स्वास्थ्य की देखरेख में किसी नई तकनीक की सहायता से आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जरा बताएंगे कि किस नई तकनीक की बात हो रही है और वह क्या परिवर्तन लाएगी?
नेहा जी, बीमारियों से निपटने के दो रास्ते हैं। पहला, बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही उसका इलाज किया जाए। दूसरा, बीमारी की संभावना का पता लगाकर उसकी रोकथाम कर ली जाए। अधिकतर बीमारियों का इलाज उनके लक्षण नजर आने पर किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां घातक होती हैं, जिनका इलाज लक्षण नजर आने से पहले किया जाए तो आसान रहता है, जैसे कैंसर और हृदय रोग। लेकिन लक्षण दिखाई देने से पहले इनकी दस्तक सुन लेना आम चिकित्सक के बस का काम नहीं है। यह काम कंप्यूटरों की कृत्रिम बुद्धि के सहारे किया जा सकता है।
लेकिन यह कृत्रिम बुद्धि रोगों की संभावना का पता कैसे लगाती है? कोई उदाहरण देकर समझाइए।
नेहा जी, असल में देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत में कई ऐसे वैद्य हुए हैं जो इंसान की नाड़ी की गति और चेहरे के परिवर्तन को पढ़कर बीमारी को पहचान लेते थे और उनकी दवाएं काम कर जाती थीं। लेकिन ये काम हजारों में कोई एक वैद्य कर पाता था। आजकल इसी काम को कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गूगल कंपनी के एक शोध दल ने कृत्रिम बुद्धि को ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि वह लोगों की नाड़ी की गति और आंखों के रेटिना तक खून पहुंचाने वाली बारीक नलियों के अंतर को पढ़कर ये बता सकती है कि इंसान को दिल की बीमारी होगी या नहीं।
यह तो हैरानी की बात है। क्या कृत्रिम बुद्धि के दिल की बीमारी के पूर्वानुमान सही निकले हैं?
जी हाँ, 90% सही। यही नहीं, एक सीरियाई वैज्ञानिक ने तो एक ऐसी मशीन तैयार की है जो चुंबकीय तरंगों की सहायता से घर में रहने वाले सभी सदस्यों की दिल की धड़कन और नींद जैसी शारीरिक गतिविधियों से लेकर शरीर में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखती है और इनके सहारे किसी भी तरह की भावी बीमारी के प्रति सावधान करती रहती है।
अरे वाह, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो यह मशीन बड़े काम की हो सकती है। यह किस किस तरह की बीमारियों को पकड़ सकती है?
यह शारीरिक के साथ साथ तनाव और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों के प्रति भी सचेत कर सकती है। चिकित्सा और कंप्यूटर तकनीक के वैज्ञानिक मिलकर कृत्रिम बुद्धि वाली कुछ ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो चिकित्सा के पारंपरिक रूप को बदल रही हैं। जैसे अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एली नाम की आभासी डॉक्टर बनाई है जो चेहरा पढ़कर मानसिक बीमारी का पता लगा लेती है। एक कंपनी ने फेस टू जीन नाम का एक ऐप बनाया है जो चेहरे को पढ़कर आनुवंशिक रोगों की संभावना के बारे में बता सकता है।
यानी काफी दिलचस्प काम हो रहे हैं। इनसे हमारे स्वास्थ्य की देखरेख पर क्या असर पड़ेगा?
मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोगों का इलाज करने की बजाय उनके कारणों को खत्म करना स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य बन जाएगा। नए आविष्कारों की राह कठिन जरूर होगी, लेकिन इसके सहारे लोगों का स्वास्थ्य और बेहतर होगा और पैसा भी कम खर्च होगा।
प्रोफेसर दिनेश सिंह, स्वास्थ्य की देखरेख में होने जा रहे परिवर्तनों पर रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4 प्रश्न 16 से 23।
यात्रा में सहज संवाद और परिचय के महत्व पर लेखक रास विहारी जोशी के विचारों को ध्यान से सुनिए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए ए बी अथवा सी में से किसी एक विकल्प को सही का निशान लगाकर चुनिए। उनके विचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे।
कई लोगों से यह सुना और जाना है कि अमुक बस या रेलगाड़ी के सफर में किसी परिवार या व्यक्ति से परिचय हुआ और वह परिचय एक लंबी मैत्री में बदल गया, भले ही दोनों पक्ष अलग अलग शहरों के हों। और कुछ परिचय ऐसे भी होते हैं जो किसी लंबी मैत्री में नहीं बदलते, ना ही दोनों पक्ष फिर शायद कभी आपस में मिल पाते हैं, पर जितनी देर साथ रहते हैं उतनी देर एक सखा भाव जैसा बना रहता है। कभी कभी सोचता हूं ये जो तटस्थ जगहें होती हैं किसी सड़क, गली, बस, बाजार, स्टीमर आदि की, वे भी इस लंबी मैत्री या थोड़ी देर के आत्मीय सखा भाव में अपना योग देती हैं। गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था, इस संदर्भ में हमेशा याद आती है। समाज और सामाजिकता का अर्थ यही है कि हम एक सहयोगी की भूमिका में भी रहें, एक दूसरे के दुख सुख और दिलचस्पियों को जानें। लेकिन देखता हूं कि आजकल सहयात्रियों में एक तरह का सशंक भाव जैसा बना रहता है। बातचीत जल्दी से शुरू नहीं होती। शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए मैंने पाया है कि अगर मैं कुछ पूछ या बताकर सहयात्री से बातचीत शुरू न करूं तो कई घंटे अनबोले ही बीत सकते हैं। हवाई यात्राओं में तो आम तौर पर ऐसा अनबोलापन बना ही रहता है। बहरहाल, सफर के दौरान दो पक्षों का मिलना जुलना, बतियाना और साथ रहना इस वजह से भी होता है कि सफर में आने वाले किसी संकट के समय वे एक दूसरे के काम आ सकते हैं। दरअसल ये तथ्य मन मस्तिष्क की भीतरी तहों में कहीं बसा होता है। जो भी हो, सफर के दौरान हुई मैत्रियां बड़ी प्रिय और मूल्यवान होती हैं। वे सामाजिक सहयोग में हमारा भरोसा बढ़ाती हैं। पिछले दिनों भोपाल में मेरे एक प्रियजन ये बता रहे थे कि यूरोप की एक आयोजित यात्रा में उनके साथ कई परिवार थे। शुरू शुरू के संकोच के बाद वे सब एक दूसरे से कुछ इतना खुल गए कि लगा सभी वर्षों से परिचित थे। अब उनमें से कई एक से ईमेल, फोन और सोशल मीडिया से उनका संपर्क होता रहता है। यह भी तथ्य है कि अपने परिवार के अलावा जो भी रिश्तेदारियां बनती हैं वे आम तौर पर अपरिचितों को ही पास लाकर उनसे परिचय करवाती हैं। अपरिचित ही परिचित बनते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि के एक गीत में लिखा है, पहचान मिली अनजानों की, कितनी जगहों पर ठाव मिली, जो दूर कहीं थे बंधु बने, जो पर थे प्रियजन कहलाए। सो आज फिर याद आ रही है 7-8 वर्ष की उस लड़की की जो एक बार हमें राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से हावड़ा जाते समय मिली थी। वह एक बंगाली माँ और तमिल भाषी पिता की संतान थी। पिता वायुसेना में अफसर थे। वह अपनी माँ के साथ कोलकाता जा रही थी नाना नानी से मिलने। उससे मेरी बातें कुछ बांग्ला, कुछ हिंदी, कुछ अंग्रेजी में भी होती रहीं।
उसने न जाने कितनी बातें अपने स्कूल, परिवार और सहेली की मुझे और मेरी पत्नी को बताई। उसकी माँ उसकी बातों पर मुस्कराती रही। उससे फिर भेंट नहीं हुई, नहीं उसकी सारी बातें याद रहीं। ऐसी ही मुलाकातें कुछ धुंधली, कुछ स्पष्ट सी याद आती रहती हैं। असल में ये मानव संबंधों में गहराई और प्रीति का भरोसा जगाती हैं, कभी करुणा का और कभी सहज ही सहयोग और रक्षा का। जयपुर के एक कलाकार शिविर में भेंट हुई थी ऑक्सफोर्ड की कलाकार हेलेन गेनली से। सामान्य सा परिचय हुआ, लेकिन जब देसी विदेशी कलाकारों से भरी हुई बस रणथंभौर का अभयारण्य देखने पहुंची तो मैंने पाया कि वे मेरी पत्नी, बेटी वर्षिता और मेरे साथ साथ चल रही हैं। खूब बातें हो रही हैं। हम साथ साथ ही पशु पक्षियों की गतिविधियों पर टिप्पणी कर रहे थे। कोई घंटे भर बाद ऐसा लगा मानो हम उन्हें वर्षों से जानते हैं। वे मेरी ही उम्र की हैं, सो विनोद पूर्वक बोली, हम जुड़वा हैं, शायद पिछड़ गए थे।
अभ्यास चार के इन विचारों को अब आप फिर से सुनेंगे।
कई लोगों से यह सुना और जाना है कि अमुक बस या रेलगाड़ी के सफर में किसी परिवार या व्यक्ति से परिचय हुआ और वह परिचय एक लंबी मैत्री में बदल गया, भले ही दोनों पक्ष अलग अलग शहरों के हों। और कुछ परिचय ऐसे भी होते हैं जो किसी लंबी मैत्री में नहीं बदलते, ना ही दोनों पक्ष फिर शायद कभी आपस में मिल पाते हैं, पर जितनी देर साथ रहते हैं उतनी देर एक सखा भाव जैसा बना रहता है। कभी कभी सोचता हूं ये जो तटस्थ जगहें होती हैं किसी सड़क, गली, बस, बाजार, स्टीमर आदि की, वे भी इस लंबी मैत्री या थोड़ी देर के आत्मीय सखा भाव में अपना योग देती हैं। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था इस संदर्भ में हमेशा याद आती है। समाज और सामाजिकता का अर्थ यही है कि हम एक सहयोगी की भूमिका में भी रहें, एक दूसरे के दुख सुख और दिलचस्पियों को जानें। लेकिन देखता हूं कि आजकल सहयात्रियों में एक तरह का सशंक भाव जैसा बना रहता है, बातचीत जल्दी से शुरू नहीं होती। शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए मैंने पाया है कि अगर मैं कुछ पूछ या बताकर सहयात्री से बातचीत शुरू न करूं तो कई घंटे अनबोले ही बीत सकते हैं। हवाई यात्राओं में तो आम तौर पर ऐसा अनबोलापन बना ही रहता है। बहरहाल, सफर के दौरान दो पक्षों का मिलना जुलना, बतियाना और साथ रहना इस वजह से भी होता है कि सफर में आने वाले किसी संकट के समय वे एक दूसरे के काम आ सकते हैं। दरअसल ये तथ्य मन मस्तिष्क की भीतरी तहों में कहीं बसा होता है। जो भी हो, सफर के दौरान हुई मैत्रियां बड़ी प्रिय और मूल्यवान होती हैं। वे सामाजिक सहयोग में हमारा भरोसा बढ़ाती हैं। पिछले दिनों भोपाल में मेरे एक प्रियजन ये बता रहे थे कि यूरोप की एक आयोजित यात्रा में उनके साथ कई परिवार थे। शुरू शुरू के संकोच के बाद वे सब एक दूसरे से कुछ इतना खुल गए कि लगा सभी वर्षों से परिचित थे। अब उनमें से कई एक से ईमेल, फोन और सोशल मीडिया से उनका संपर्क होता रहता है। यह भी तथ्य है कि अपने परिवार के अलावा जो भी रिश्तेदारियां बनती हैं वे आम तौर पर अपरिचितों को ही पास लाकर उनसे परिचय करवाती हैं। अपरिचित ही परिचित बनते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि के एक गीत में लिखा है, पहचान मिली अनजानों की, कितनी जगहों पर ठाव मिली, जो दूर कहीं थे बंधु बने, जो पर थे प्रियजन कहलाए। सो आज फिर याद आ रही है 7-8 वर्ष की उस लड़की की, जो एक बार हमें राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से हावड़ा जाते समय मिली थी। वह एक बंगाली माँ और तमिल भाषी पिता की संतान थी। पिता वायुसेना में अफसर थे। वह अपनी माँ के साथ कोलकाता जा रही थी नाना नानी से मिलने। उससे मेरी बातें कुछ बांग्ला, कुछ हिंदी, कुछ अंग्रेजी में भी होती रहीं। उसने न जाने कितनी बातें अपने स्कूल, परिवार और सहेली की मुझे और मेरी पत्नी को बताई। उसकी माँ उसकी बातों पर मुस्कराती रही। उससे फिर भेंट नहीं हुई, नहीं उसकी सारी बातें याद रहीं। ऐसी ही मुलाकातें कुछ धुंधली, कुछ स्पष्ट सी याद आती रहती हैं। असल में ये मानव संबंधों में गहराई और प्रीति का भरोसा जगाती हैं, कभी करुणा का और कभी सहज ही सहयोग और रक्षा का। जयपुर के एक कलाकार शिविर में भेंट हुई थी ऑक्सफोर्ड की कलाकार हेलेन गेनली से। सामान्य सा परिचय हुआ, लेकिन जब देसी विदेशी कलाकारों से भरी हुई बस रणथंभौर का अभयारण्य देखने पहुंची तो मैंने पाया कि वे मेरी पत्नी, बेटी वर्षिता और मेरे साथ साथ चल रही हैं। खूब बातें हो रही हैं। हम साथ साथ ही पशु पक्षियों की गतिविधियों पर टिप्पणी कर रहे थे। कोई घंटे भर बाद ऐसा लगा मानो हम उन्हें वर्षों से जानते हैं। वे मेरी ही उम्र की हैं। सो विनोद पूर्वक बोली, हम जुड़वा हैं, शायद पिछड़ गए थे।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।